होपफुली ओवरसीज पाकिस्तान. सो द फर्स्ट थिंग इज इमीजिएटली टू ये इसको डिस्टिल करना, खत्म करना, पारे को नीचे लाना. इलेक्शंस की बहुत हद जरूरत है. इमरान पावर में आएगा लगता है, मेजॉरिटी में आए, हो सकता है 2/3 आए. उसका इमीजिएट ही हैज टू डू टू थिंग्स इमीजिएटली. द फर्स्ट इज टू इनिशिएट रिफॉर्म टू चेंज द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, के वो जो जिन है ना उसको काबू करना है. ये जिन है, इसको काबू करना है. दूसरा, उसने हायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर है उसको ठीक करना है. जब ये दो सतून ठीक करेगा ना, उसके बाद ही कैन देन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म.
तीन साल में लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, बैकवर्ड गया है. आप क्या कहते हैं, तीन साल में हकीकत में कोई काम तो हुआ?
बहुत काम हुआ.
लेट हिम से
कि पाकिस्तान ने तरक्की की कि नहीं,
कोई तरक्की की, कोई काम हुआ कि नहीं हुआ.
ऑब्वियसली हुआ, आपकी जीडीपी बढ़ती रही है. लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान की इंडेटेडनेस, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरह देखती हैं कि आपके पास कितना
इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है,
और कितना आप कर्जे में हैं.
yeah.
अगर आप कर्जे में चली गई और आपके 10 घर के अंदर एक आदमी अरबपति हो गया और 9 जो हैं बेचारे उनको दो रोटी नहीं आ रही.
नॉर्थ अमेरिका का भी यही हाल है.
अच्छा, अब आप मुझे कहीं और लेके जाए नॉर्थ अमेरिका की, तो मैं किसी और चीज. नॉर्थ अमेरिका एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ये सारी वेस्टर्न सोसाइटीज की ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, मास ऑफ द पीपल को देती है एक गाड़ी, एक घर, एक फ्री एजुकेशन स्कूल की और कॉलेज की, ये दे देती है. उसके बाद कहते हैं लूटो या फुटो, जहां जाओ. कंपनी,
नॉट टू फॉरगेट हेल्थ केयर
एंड हेल्थ, वेल नॉट अमेरिका बट कैनेडा. बट कैनेडा,
मगर सर आपने अगर कैनेडा का देखा हो तो इस महीने रिपोर्ट आई है कि 1.5 लाख लोगों ने एक महीने में फूड बैंक पे इंतजार किया. द दिस नंबर इज गॉन अप वेरी हाई, इज दैट राइट?
1.5 लाख लोगों ने, विच इज द हाईएस्ट एवर.
हाईएस्ट एवर, ऑलमोस्ट डबल.
1.5 लाख, ये लेट मी करेक्ट इट, फ्रॉम वन फूड बैंक.
इट्स वन फूड बैंक.
ओह, जस्ट वन फूड बैंक,
वन फूड बैंक.
तो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन हैज हिट पीपल बैडली.
यस यस.
कल की रिपोर्ट है कि यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज कैनॉट फीड देयर फैमिलीज 3 times meal.
Wow.
अच्छा, अगली बात. डॉक्टर साहब, आपके पास सिर्फ एक मिनट होगा. डॉक्टर मुर्सा, आपको शायद इस रिपोर्ट का पता है कि नहीं.
किसका जी?
कितने बेशुमार बच्चे हैं इन नॉर्थ अमेरिका, हालांकि चाइल्ड टैक्स भी आता है माँ बाप को, दे गो विदाउट ब्रेकफास्ट, भूखे जाते हैं. डू यू नो दैट?
सो आई डोंट नो द स्टेटिस्टिक एज अ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन.
आप जरूर देखिए.
ऑनेस्टली नहीं, मैं देखूंगा जरूर. मैं माजे चाहता हूँ, मेरे पास वो स्टेटिस्टिक नहीं. आई वुड वॉन्ट टू सी, एंड यू नो इफ दैट इट रियली स्पीक्स ऑफ द इंटायर ग्लोब. देन
ये तो इट स्पीक्स,
दिस इज द रीजन ऑफ पैंडेमिक. ओके, लेट मी जस्ट क्लियर इट. ये जो हो रहा है ना, पैंडेमिक था 2 साल 2.5 साल, उसके फौरी बाद ये जो जंग हुई, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, जंग एंड पैंडेमिक, उसकी वजह से ये हालात हुए.
भाई मैंने जो स्टेटिस्टिक पढ़ी है ना, वो ये है कि इंडिया, सॉरी, यूएस और कनाडा में इन द लास्ट 30 इयर्स, 3 decades, दिस इज द हाईएस्ट एवर एनुअल इन्फ्लेशनरी रेट. इज दैट करेक्ट?
इन 40 इयर्स,
इन 40 देन इन कनाडा, 30 इन द यूएस, दैट आई नो फॉर अ फैक्ट.
सही.
इफ
दैट इज द केस, दैट इज एग्जिस्टेंशियल फॉर द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, वेयर फ्यूल प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, यूक्रेन एंड रशिया, semiconductor, I don't know, Balsa, what do you think is going to happen?
Yeah, I don't know, magar there was a time, ye food banks ka, it's alarming. Magar main ye sare ke sare ghane hain, Dr. Murza se ek minute lungi, magar Dr. Murza, main bahut nalayak sa shagird hoon. Main samajhti hoon ke wo Great Depression 1939 ke baad aaya tha, theek hai? Log lineon mein khade mein, 39 के बाद 40 साल आ जाए तो 88 में अगला ये कनाडा को हिट हुआ था, जो 29 से 88 पे आ जाए, वही 40-50 साल.
सो यू आर आस्किंग हिम वेदर वी आर हेडिंग फॉर अ ग्रेट डिप्रेशन.
वी आर हेडिंग टुवर्ड, आई फील सो, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन गंदम बो नहीं सक रहा, रशिया की जो सूरत हाल है, गैस कहीं पे है नहीं. जी डॉक्टर साहब, यू हैव I'm so sorry, I cannot give more than 1.5 minutes. आप भी बड़े मुश्किल टीचर हैं.
जी
जी.
तो सवाल क्या है कि
ग्रेट डिप्रेशन
विच वे वी आर हेडिंग,
ये अल्लाह बेहतर जानता है. मैं तो सिर्फ प्यास से काम ले सकता हूँ. मेरे नाफिस राय में कोई ग्रेट डिप्रेशन नहीं आएगी. उसकी वजह यह है कि जो हमारी 1920 और 30 और 40 और 50 की दिहाइयों में प्रोडक्शन कैपेसिटी थी और लोकेशन जो थी प्रोडक्शन की और कुछ जो हमारी सप्लाई चेन थी, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था. अगर कहीं अगर कहत आ गया तो कोई तरीका नहीं था कि वहां अनाज पहुंचाया जा सके. तो ऐसा आपका मसला है नहीं. अब तो एक एक टैंकर जो है वो 16,000 कंटेनर लेके चल सकता है. तो वो मसला मुझे दिखाई नहीं देता. लेकिन
मगर प्रोडक्शन भी तो होनी चाहिए ना. अगर प्रोडक्शन ही नहीं है.
प्रोडक्शन है, मतलब इट्स नॉट कि दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. यानी आप अभी अगर कपास उगा रहे हैं और भूख का मसला हो गया तो आपको कपास उगाने की बजाय गंदम उगा लेनी चाहिए. वो इतनी कॉमन सेंस होती है. ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास, क्योंकि जो हायर यील्ड हायर वैल्यू क्रॉप्स होती हैं वो खुराक से ताल्लुक नहीं रखती. तो लेकिन जब भूख मसला बनती है तो फिर आप खुराक गन्ना उगाएंगे, चावल उगाएंगे, गंदम उगाएंगे, कपास नहीं उगाएंगे, सोयाबीन नहीं उगाएंगे. तो ऐसा नहीं है. जो मसला मुझे नजर आ रहा है वो जो पाकिस्तान पे गुफ्तगू हो रही है, मैं एक वजाहत करना चाहूंगा अगर मुझे इजाजत
दी सर,
कि प्रोफेसर होने के नाते मैं हमेशा एक चीज में तमीज रखता हूं, वो है यकीन और इल्म. और इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि मुझे मसलन फरिश्तों के होने पर यकीन है लेकिन मेरा इल्म नहीं है. मतलब मैंने आज तक कोई फरिश्ता देखा नहीं, ठीक है, ना ही कभी महसूस किया कि मेरे कंधों पर कोई दो फरिश्ते बैठे हैं, लेकिन यकीन है, ईमान का हिस्सा. तो ये जो करप्शन की हम बात करते हैं और नाम लेते हैं, मुझे शुबा है और डर है कि ये सब चीजें हमारे ईमान का हिस्सा बन गई है, हमारे इल्म का हिस्सा नहीं है. और इसी वजह से हम बिला तकल्लुफ और बिला तरद्दुद बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हैं. लेकिन अगर कभी कोई हमें कोर्ट ले जाए यहाँ पर कि जनाब आप कनाडा में बैठे हैं और ये मैं आपको कोर्ट ले जा रहा हूँ, आपने कहा था मैंने इतने बिलियन डॉलर की थी करप्शन, साबित कीजिए, तो अगर तो वो हमारे यकीन की बुनियाद पे था तो मसला बनेगा, पर अगर इल्म की बुनियाद पे है तो फिर वो सामने लाना पड़ा जरूरी है, बजाय इसके कि वेट करें कि कोई हमें अदालत में ले जाए. अगर हमारे इल्म में है कि ये करप्शन हो चुकी है तो उसकी वजाहत और उस पर पर्दा, उसकी पर्दे को हटाना हमारा शरई कानूनी हक बन फर्ज बनता है. तो मेरी रिक्वेस्ट थी
डॉक्टर मुर्शिद हैदर, बहुत शुक्रिया जी. जी
डॉक्टर साहब, आपकी बात से 100% इत्तेफाक है. और जब मैं कम से कम बात करता हूं कि एक्स वाई जेड करप्ट है तो मैं जो पब्लिक शवाहिद हैं मैं उनको देख के करता हूं, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता. या अगर मेरा जाती इसके अंदर कोई मैं उस महफिल में बैठा था जहां ये बात हुई हो, तो जितने इस वक्त एविडेंस मैंने कम से कम पिछले 3-3.5 साल में देखे हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट में, और तकरीबन कई कई जगह मैंने 100-150 पेज का एविडेंस पढ़ा है, वो इतना इररिफ्यूटेबल है कि यहाँ से पैसा बाहर जाने का कोई ट्रेल नहीं है, बाहर से पैसा कमाने का कोई ट्रेल नहीं है, लेकिन बाहर से पैसा मुल्क में आने का ट्रेल है. और आने का भी उन लोगों के पास जिनका कहीं वहमो गुमान में नहीं है कि ये पैसा वो कमा सकते हैं. तो ये सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है ये इतना ओवरवेलमिंग है, और इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी, इसलिए कि मैं उन लोगों से वाकिफ हूँ जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे. वो कहते थे एट एवरी लेवल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दे वर स्टॉप्ड इम्पीडेड बोथ बाय द कोर्ट्स ऑफ द लैंड एंड बाय द पावर्स टू बी, एंड आई हैव नेम्स ऑफ पीपल. तो मैं
एविडेंस बेस्ड,
तो मुझे ये नहीं पता कि 200 बिलियन जो इकबाल साहब कहते हैं उसके सारे का मैं आपको हिसाब दे सकूं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का मैं एविडेंस बेस्ड जो कि पब्लिकली अवेलेबल है इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी लॉ एंड इन पब्लिक पब्लिश्ड मटीरियल वो मैं दे सकता हूं. मेरे दुआ करें.
मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि देखिए मियां साहब को जो नाहल करार दिया गया वो उसको सिर्फ ये वजह बताई कि उन्होंने एक वर्क परमिट डिक्लेयर नहीं किया था.
ये एल कैपोन केस है सर, दिस इज एन एल कैपोन केस.
वर्कअपोन नहीं लेकिन वो एल्कापोन के ऊपर उन्होंने टैक्स इवेजन का पूरा केस बनाया था।
जी जी,
यहाँ तो उन्होंने कहा कि ये एक वर्क परमिट था उनके पास, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया
और पैसे लेते थे।
एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री तो
नहीं, बट मुर्तजा साहब की बात में वजन है, मुर्तजा साहब की बात में वजन है।
देखिए दस्तावेज सबूत अगर हो जिस तरह आप कह रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती।
मुर्तजा भाई नहीं होती, मुर्तजा भाई नहीं होती। मैं डेढ़ साल पाकिस्तान रह के आया,
11-8 वर्ष जरदारी को जेल में रखा, ठीक है। और
वो जेल में नहीं रहे सर, वो अस्पताल में रहे, फिर उसके बाद घर में रहे। ये मफरूजा है कि 11 साल वो जेल में रहे और 93% हेयरिंग्स की एडजस्टमेंट जरदारी साहब के लॉयर ने ली, 7% हुकूमत ने ली।
जी जी, देखिए देखिए जब वो केस चला उसमें अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाई है।
बस ये एक डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बस मैं यहीं पे क्योंकि मैंने प्रोग्राम में आगे लेके चला।
डॉक्टर साहब को लाइएगा अगली निशिस्त,
अगली निशिस्त में हम सारे होंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आई एम सो सॉरी,
बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब मुलाकात होनी चाहिए
इंशाल्लाह।
मैं आपको एक बात कहता हूँ, सिस्टम की प्रॉब्लम है कि हम प्रूव नहीं कर सके। पाकिस्तान का इतना पैसा इंग्लैंड में पड़ा है, इंडिया ने प्रूव कर दिया,
अब ये
पाकिस्तान में प्रूव ही नहीं कर सका कि वो पैसा हमारा है।
वी आर ऑन एयर। जो इनके जार थे ना, अकाउंटेबिलिटी जार, वो खुद किसी के मोल थे।
बहुत शुक्रिया।
नॉट जस्ट दैट, जी वन पॉइंट कि ये हमारे जो लुटेरे हैं ये बहुत सियाने हैं। They have hired the best minds in the world to hide.
वो मुसावी आपको पता है वो मुकर गया?
वो तो नहीं, वहाँ क्यों मुकर गया? क्योंकि उसको नवाज शरीफ ने ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए।
He just refused. He said no. तो
हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उसने एडमिट किया कि yes.
He refused.
मैं कहता हूँ इमरान 2/3 से आए, एक ड्रेकोनियन किस्म का लॉ डाले, इन सबको कठा करके बंद करे।
He is very stubborn man.
कौन?
इमरान।
That is true.
वो जो उसकी ढिटाई है ना,
वो अगर आप उसको if I look at it as persistence, perseverance, I see that as a positive quality. If I see that as stubbornness, not to accept something that is,
he's got tenacity. He's very tenacious.
तो then it is a negative quality. Because he has both, like I said, the discipline of the Pakistan Army is his greatest strength and greatest weakness. To be stubborn or have tremendous perseverance or tenacity is every virtue taken to its limit becomes a vice.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मैं ना रवि,
दो वंडरफुल लोग, इकबाल मिलाड वाला बैंकर थे मगर उसके बावजूद आपने CNBC और समा को 7 साल सर्विसेज दी, सेटअप किया और बड़ा कमाल का काम किया था। इज हियर सैयद हैदर रजा मेहदी साहब, मैं उनका फिर डेली टाइम्स के साथ लिखते हैं, मुझे पता चला था कि डॉन के साथ भी लिखते हैं इनकी डेली टाइम्स के साथ लिखते हैं। shrmehdi.com पे अगर आप जाएं तो आप इनके जो ब्लॉग्स हैं वो पढ़ भी सकते हैं। हैदर मेहदी
YouTube चैनल
हैदर मेहदी के नाम से YouTube चैनल देखिएगा। एंड डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश है कि ये बड़े दिमाग आपके साथ रابطے में रहे, ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 2 बार, ताकि हम और कोई ये जितने मेरे साथ लोग हैं, जैसा मैं ज़ाती तौर पे, वी टेक न्यूज फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज, तो ये भी रिलायबल रिसोर्सेज हैं। दैट इज द रीजन वी वांट देम टू बी पार्ट एंड पार्सल, ताकि आपसे कभी कभी बात हो सका करे। टॉप ऑफ द आवर, वी आर ऑलरेडी 15 मिनट्स बिहाइंड एंड देन आई विल टेक यू टू पाकिस्तान, जहाँ से हमारे साथ होंगे जनाब खाबर नईम हाशमी साहब, हमारे साथ रहिएगा।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Oh, maya mehndi roka, ya vyada hove moka, President Convention Center.
Sweet Mahal walean da bilkul nawa, President Convention Center, 100 to leke 700 tak di capacity. Te khana ohi lajawab, Sweet Mahal wala, President Convention Center, conveniently located in Vaughan. Hune call karo ate apniyan partiyan book karao, 416-433-9191, 416-433-9191.
President Convention Center.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो
ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000 अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
ट्रकिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने का शानदार मौका मेज कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं ट्रक डिस्पैचर एंड फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज इस ट्रेनिंग कोर्स के जरिए आप बन सकते हैं ट्रक डिस्पैचर फ्रेट ब्रोकर या शुरू करें अपनी ट्रकिंग कंपनी अगर आप ट्रकिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हम आपको कंपनी को सेटल करना परमिट्स और तमाम दूसरी चीजों का बंदोबस्त करने में मदद करते हैं आज ही कॉन्टैक्ट करें मेज कंसल्टेंसी 9058262919
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में खबरहार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके शहर ब्रैम्पटन में टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800
हर किसी टीम फॉर एंटरटेनमेंट एंड ट्रांस 99 लॉजिस्टिक्स प्रेजेंट अरिजीत सिंह लाइव इन कॉन्सर्ट Saturday, June 11th at the First Ontario Centre, Hamilton. In association with Trans Expert, Autobahn, Roadlink, RPD24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit Ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment presents Arijit Singh Live in Concert.
जी सामने नाजरीन वेलकम बैक अगेन एंड 4:17:17 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं हम एक और मुलाकात भी करवाएंगे आपके नॉट टू फॉरगेट स्कॉट डेवी हमारे साथ होंगे ब्रोकर प्रेसिडेंट ऑफ डेवी रियल स्टेट इंक वेरी सून ही इज गोइंग टू बी विद अस टू मगर सबसे पहले तो दिल से माजरत चाहता हूं जनाब कावर नईम हाशमी साहब को 3:30 इनका टाइम होता है मगर आज आपको पता है कि कुछ मेहमान हमारे पास आ गए थे तो देर हो गई हमें मगर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कावर नईम हाशमी का कि इतनी रात गए वो हमारे साथ हैं कावर नईम हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर कैसे हैं आप
जी वालेकुम सलाम आप कैसे हैं
अल्हम्दुलिल्लाह सर कावर भाई मैं तो एयर पे आपसे माजरत मांगी है कि भाई आज बहुत देर हो गई हमें पाकिस्तान में
माजरत ना किया करें वो मैंने एक फराज का शेर जो है ना वो एक मिसरा
जी
तो मैं याद कर लेता हूँ कि आदत ही बना ली है तुमने तो फराज अपनी
ये आपने ठोक के लगाई है परवाह नहीं कावर नईम हाशमी साहब पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हो रहा है तो इसलिए मैं चाह रहा था कि चाहे कुछ देर भी हो जाए मगर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करूं मैं
जरूर
जी फरमाइए पाकिस्तान के क्या हालात हैं आज
देखिए पाकिस्तान में जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो तो हुकूमत और इमरान खान के
जी
चलो तो उस पे टाइम आपके पास पता नहीं है या नहीं है लेकिन पहली खबर तो आज ताजा तरीन ये है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसने पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान जो है लागू भी हो गया है तो गुज़िश्ता रोज जो दोहा में पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए थे आईएमएफ से तो आईएमएफ ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम आपको कर्जे की अगली किस्त नहीं दे सकते, आपको पेट्रोलियम, डीजल, बिजली और ये तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ाना होगी, और इसके अलावा जहाँ जहाँ आप सब्सिडीज दे रहे हैं उनको ख़त्म करना होगा। तो 24 घंटे से भी पहले पहले ऐलान कर दिया गया है, IMF की शरायत मान ली गई है और कर्जे के लिए रास्ता जो है वो हमवार कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बताता चलूँ कि ये जो IMF से मुआदा है ये इमरान खान ने किया था कीमतें बढ़ाने का, और कीमतें बढ़ाने का मुआदा करने के बाद मौसूफ ने मजीद कीमतें नीचे गिरा दी थी, क्योंकि उनका एकदम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चूंकि आ गया था, तो उन्होंने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए ये कीमतें बढ़ाई थी। लेकिन बहरहाल ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये एक बैन अल-अक़वामी मजबूरी है पाकिस्तान की, इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है स्टेबल होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 202 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। तो एक खबर और मैं आपको देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने बैरून मुल्क मुकीम जो इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक देने का जो एक फैसला किया था इमरान खान हुकूमत ने, उस फैसले को ख़त्म कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल को भी नामुमकिन करार दे दिया गया है आइंदा इलेक्शन में। तो आज कौमी असम्बली में नैब आर्डिनेंस भी पेश हुआ है, नैब आर्डिनेंस बहुत अहमियत का हामिल है, और इसमें यह कहा गया है कि नैब के चेयरमैन जिनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है, जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो उनका टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा, उनकी जगह नया चेयरमैन नैब लाया जाएगा या उनका जो सेकंड आदमी होगा वो ये एक्ट अदा करेगा। तो वफाकी और सूबाई टैक्सों के मामलात भी नैब के दायरे इख्तियार से निकाल लिए गए हैं। नैब अब बगैर सबूत के किसी भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। पहले माजी में जब से नैब जो पाकिस्तान में बना है तो इसका ये तरीक़ेकार था कि आदमी को उठा लेते थे, उसके बाद तफ्तीश करते थे, उसको एक लंबे अरसे के लिए अपने पास रखते थे और उससे जो कुछ उगलवाया जा सकता था वो मर्जी का उगलवाया जाता था। तो ये चीज़ें जो है अब बगैर सबूत के, कि पहले आपके पास सबूत होना चाहिए किसी आदमी के खिलाफ इल्जाम का, उसके बाद आप उसको गिरफ्तार कर सकेंगे। तो गिरफ्तार होने वाले आदमी को 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में भी पेश करना होगा, जबकि ये पहले महीनों ऐसे नहीं होता था। तो नैब की तरफ से जो गिरफ्तार आदमी है उसका रिमांड लिया जाता था 3 महीने का, 90 दिन का, अब ये मुद्दत जो है ये 14 दिन कर दी गई है। मेरे ख्याल में ये एक काबिल तहसीन इकदाम है, और अब हम आते हैं इमरान खान और हुकूमत के दरमियान जो तसादम हुआ है उस हवाले से। तो माजिद भाई थोड़ा सा ये तवील गुफ्तगु है लेकिन लोगों के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मंगल और बुध के 2 दिन आवाम के लिए इंतहाई एसाब शिकन गुजरे। इमरान खान को इस्लामाबाद में धरने से रोकने और मुल्क भर के ज़मीनी रास्ते बंद करने और तारीख के सबसे बड़े क्रैकडाउन ने शहर शहर में लोगों का जीना दूभर कर दिया था। हजारों लोग दिन और 2 दिन और 2 रातें जगह जगह पुलिस नाकों के पास अपने घरों में भी नहीं जा सके। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जो लाहौर के रहने वाले लोग होंगे आप कराची में बता सकते हैं, दूसरे शहरों का भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलाका है ठोकर का इलाका, ठोकर पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। ठोकर को क्रॉस करें तो कम से कम 50,000 घराने वहां पर आबाद हैं ठोकर क्रॉस करने के बाद। उन 50,000 या 1,00,000 घरों के जो मर्द काम पर गए हुए थे उनको 2 दिन 2 रातें जो है अपने घर जाने की इजाजत नहीं मिली। इस तरीके से लोगों को परेशानियां जो है हुई, तो हुकूमत सख्त इकदामात करके और लोगों को हिरासत में लेकर और पता नहीं जितने भी मुमकिन इकदामात थे, ऐसे इकदामात माजिद साहब जो मैंने मार्शल लाई अदवार में भी नहीं देखे, वो इकदामात उठाए गए। ऐसे लग रहा था कि ज़ियाउल हक़ 2 की हुकूमत जो है वो आ गई है, ये इमरान खान का धरना रोकने के लिए सब कुछ किया गया और उसने हुकूमत कामयाब रही है। कामयाबी तो हम कहेंगे कि वो कामयाब रही और इमरान खान को धरना नहीं देने दिया गया या गिराव नहीं करने दिया गया पार्लियामेंट का या जो भी वो करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से ओवर एक्ट किया गया। लातादाद गिरफ्तारियां की गई, पीटीआई के लीडरों के घरों में छापे मारे गए। हुकूमत का दावा है कि पीटीआई के कारकुनों में जो वहां पर इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे थे असला भी तकसीम होना था और लाहौर के एक घर से बहुत बड़ी तादाद में असला बरामद करने का भी दावा किया गया है। मैं इस दावे को तस्लीम पूरी तरह इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार वाकयात देखे हैं जबकि पुलिस जो है या हुक्मरान जो है लोगों के घरों से सियासी मकासद के लिए वो असला जो है बरामद करते हैं, रॉकेट लॉन्चर तक घरों से बरामद कर लिए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर लाहौर में भी असला जो है वो एक लीडर के घर से, पीटीआई के लीडर है नियाजी भी, वो भी नियाजी साहब है वहां से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को इस्लामाबाद के G9 और H9 एरिया के दरमियान जो ग्राउंड है वहां पर जलसा करने की इजाजत दी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने अदालती जो अहकाम हैं उनको बालाए ताक रखते हुए अपने कारकुनों को डी चौक में जमा होने की हदायत की जिसकी उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डी चौक में मुजाहरा नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद उन्होंने अपने कारकुनों को डी चौक में बुलवाया। अब डी चौक में सारी रात जो है वो गुज़िश्ता रात जो है मुसल्ला झड़पें होती रही, जो पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने एक बख्तरबंद गाड़ी जलाई और इस्लामाबाद में फौज भी तलब करना पड़ी, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, कंटेनर हटा दिए गए और जो पीटीआई के कारकुन थे वो हुलेले जो होती हैं वो जिनसे निशाना बांधा जाता है वो भी सबके पास मौजूद थी और उन हुलेलों से वो जो एहलकार थे सिक्योरिटी वाले थे उनको निशाना बनाया जाता रहा है। इतलात ये भी है कि ताकतवर अदारे की मुदाखलत से पीटीआई और हुकूमत में ये तय पा चुका था कि इमरान खान का धरना होगा और ना ही लॉन्ग मार्च। ये बड़ी मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूं कि पहले ही ये बात तय पा गई हुई थी कि इमरान खान जो है वो ना कोई लॉन्ग मार्च करेंगे ना कोई धरना करेंगे, वो सिर्फ वहां पर खताब करेंगे जाकर, ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ तय हुआ था। और उसके बाद हुआ ये है कि इमरान खान जो है वो आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचते हैं और वहां पर सिर्फ ये ऐलान करके बनी गाला वापस चले जाते हैं कि मैं 6 दिन का अल्टीमेटम देता हूं गवर्नमेंट को कि 6 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन का ऐलान करें और अगर 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने नए इंतखाबात की तारीख ना दी तो मैं फिर धरने के लिए तैयार होऊंगा। तो डी चौक में कारकुन जो है वो डी चौक जो है ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर अमरीकी स्वार्थखाना भी है और दूसरे स्वार्थखाने भी हैं, ऐवान सदर भी है और ये जो पीटीआई के कारकुन थे इन्होंने पूरे डी चौक को, अगर आप लोगों ने फुटेज देखी हो तो पूरे डी चौक को चारों तरफ से आग लगा दी इन्होंने और आग लगाने के बाद इन कारकुनों का रुख जो था ऐवान सदर की जानिब हुआ और ऐवान सदर तक जितने भी दरख्त थे उनको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। और सख्त रुकावटों के बावजूद इमरान खान खुद जितनी रुकावटें थी वो इस्लामाबाद में 30 घंटे लेट पहुंचे हैं। उन्हें जो परसों होना चाहिए था इस्लामाबाद में, वो आज इस्लामाबाद में पहुंचे थे। तो ये एक और जो इशू बड़ा टेक्निकल है जो मैं डिस्कस करना जरूर चाहूंगा कि हुकूमत और पीटीआई की रसाकशी में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान किसी भी सतह पे यासीन मलिक को जो भारतीय हुकूमत ने दो बार सजाए उम्र कैद की सजा दी है उस पर जो एहतजाज पाकिस्तान का हक बनता था और वो एहतजाज पाकिस्तान में नहीं हुआ, इसके बावजूद एहतजाज नहीं हुआ कि उनकी जो मिसिज है मिशाल, उन्होंने एक दिन पहले इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनके शौहर को कल सजा सुनाई जाने वाली है और मैं पाकिस्तान के अवाम से, हुकूमत से, सियासी पार्टियों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस सजा सुनाए जाने से पहले जो है वो उसके लिए आवाज बुलंद करें। लेकिन ये हुकूमत और इमरान खान के दरमियान जो रस्साकशी थी उसमें ये सब कुछ नहीं हो सका। तो इमरान खान साहब जो है वो और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात जो है दर्ज कर लिए गए हैं जलाओ गिराओ के हवाले से। तो हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आज दायर की गई थी और उस दरखास्त में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट से मुखातब करते हुए कि आपने जनाब इसको जहां जलसा करने की इजाजत दी थी ये वहां नहीं गए और इन्होंने काल दी कि डी चौक में लोग आ जाए और वहां पर ये सब कुछ होता रहा जो नहीं होना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुकूमत की ये 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिसकी सरबराही जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की और इसने हुकूमत की ये दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। तो मैं समझता हूँ कि जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उन्हें ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि मेरे ख्याल में स्टैब्लिशमेंट सीज फायर करा चुकी है हुकूमत और इमरान खान के दरमियान। इमरान खान 6 दिन के बाद भी कुछ नहीं करेंगे और हुकूमत जहां तक गई है हद से ज्यादा गुजर गई है और हुकूमत को भी जो गिरफ्तार शुदगान है उनको रिहा करना होगा। और इसमें एक तो पुलिस कांस्टेबल जो है वो पीटीआई के कारकुनों की फायरिंग से हलाक हुआ है और मेरे पास जो इतलाहात है वो 1 से ज्यादा अमवात की है और एक आदमी ने तो पुलिस के खौफ से जो है वो नहर में गिर गया और उसकी तस्वीर, उसके घर का एड्रेस मुझे भी भिजवाया गया है। तो इस तरह और भी बेशुमार वाकयात हैं जो मंजरे आम पर नहीं आए। पाकिस्तान में मीडिया ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा उछालने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उन दोनों के दरमियान रहे हैं और उसके बीच में क्या क्या नुकसान हुए हैं। मिसाल के तौर पर कराची में जियो टेलीविजन जो है उसके दफातर पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया है, उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं, उसके कारकुनों को जख्मी कर दिया गया है और इस तरह शहर शहर में, लाहौर में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए, कराची के और भी कई इलाके हैं जहाँ पर पुरतशद्दुद वाकयात जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन इत्तलात ये है कि जो हमारे मुक्तदर हलके हैं उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान साहब को लगाम डाली है बल्कि ये जो हुकूमत वक्त है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से चल रही है, जो कह रहे हैं कि इमरान खान कौन होता है इंतखाबात की तारीख देने वाला, हम तो अपना 1.5 साल पूरा करेंगे जो टेन्योर है और उसके बाद इंतखाबात का ऐलान करेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत को भी पाबंद कर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान करे। तो ये अब तक की सूरत हाल है जो मैं आपके गोश गुजार की। इस पर कोई सवाल जवाब करना चाहे तो मैं तैयार हूँ।
अच्छा तो अब जी हेलो तो ये अब क्या इमरान खान का जो धरना समझ लें अब क्या उसको खत्म कर दिया गया 6 दिन के लिए?
हाँ जी, उन्होंने कहा कि 6 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन का ऐलान करें, अगर 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का ऐलान ना किया तो मैं फिर यहाँ आऊंगा धरने के लिए। ये ऐलान करके चले गए हैं बनी गाला, सिर्फ इतनी बात की है उन्होंने, इसके अलावा कोई और बात नहीं।
हाफिज साहब,
मेरा एक सवाल है कि देखिए इतनी बेशुमार, अस्सलाम वालेकुम, इतनी बेशुमार खलकत वहाँ पहुंची, मगर जब तय पा गया कि कोई एक अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इलेक्शन हो जाएंगे तो वो चले गए, तो क्या उन्होंने वो जो अवाम उनकी एक कॉल के ऊपर वहाँ पहुंचे थे उनको कोई डायरेक्शन भी दी या उनको बताया या बस वो अपने रास्ता लेके चले गए?
बीबी बात यह है कि इमरान खान साहब ने 20 लाख अफराद का दावा किया था कि वो जमा करेंगे, हकूमत ने जो एक पुरतशद्दुद एक रास्ता चुना और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में गलियां सड़कें बाजार बंद कर दिए गए, लाहौर हो, कराची हो, पिशावर हो, इस्लामाबाद हो, तमाम आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि यास्मीन राशिद मिसाल के तौर पे जा रही थी इस्लामाबाद, उनके साथ एक वफाकी वजीर थे हमाद अजहर साहब, मियां अजहर जो गवर्नर होते थे उनके बेटे हैं वो, तो ये दोनों अपनी गाड़ियों पे इस्लामाबाद जा रहे थे और रास्ते में उनको नाके पे रोक लिया जाता है और रोकने के बाद उनकी गाड़ियां कंट्रोल में ले ली जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि अब तुम लाहौर वापस जाओ पैदल, और वो पैदल रवाना हो जाते हैं। इतना सख्त जो माहौल था, आप कह रहे हैं कि क्राउड वहां था, क्राउड पाकिस्तान में या जहां आज इमरान खान गए, जहां पर उन्होंने 2 मिनट की बात की, वहां पर 20,000 आदमी भी नहीं थे। 20,000 की जो मैं तादाद बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, अगर वहां 20,000 बंदे भी होते तो मुमकिन है इमरान खान वहां 10-15 मिनट खिताब करते, वहां पर गिनती के चंद लोग ही थे। ये हकूमत की एक इंतहाई मार्शल लाई और एमरजेंसी जैसे नाफज होती है, ये जो हालात पैदा किए गए, रास्ते बंद किए गए, जगह जगह पे लोग रोके गए, तो वहां पर लोग जमा ही नहीं हो सके।
अच्छा, बड़ी बहुत बड़ी आपने बात बताई यार, मुझे भी रात देखने का मौका मिला तो लोग खाल खाली नजर आ रहे थे, तो इसका मकसद है कि जाहिर है लाहौर से तो जा ही नहीं सके, कंटेनर्स लगे हुए थे।
अभी अभी हाशमी साहब ने बताया था कि वहां पर कई लोग जो वहां पर रहते हैं 50,000 के करीब खानदान हैं, जो जिनके मर्द हजरात कामों पर अपने बाहर निकले थे वो 2 दिन से अपने घर नहीं जा सके।
बहुत शुक्रिया खावर नईम हाशिम साहब, मैं बहुत माफ़ी की ख्वास्त करूँ कि आज आपको इंतज़ार करना पड़ा, मगर वो कहते हैं ना कि मेरे हमारे स्टूडियो में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट थे जिनकी वजह से देरी हुई। आखिर में क्या फरमाएंगे आप?
आखिर में ये मैं अर्ज करूँगा आपसे, पाकिस्तानियों से भी, इमिग्रेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, ये सुलह जुआना जो एक रवैया है उसको इख्तियार करना चाहिए। ये सुलह जुआना रवैया आपस में जो है, इसके लिए अदालत उज़्मा जो है उसने भी वाज़ेह निशानदेही की है कि आपस में बैठकर डायलॉग करें, और कल दोनों पार्टियों के दरमियान डायलॉग भी हुआ, ये भी मैं आपको बताऊं।
अच्छा।
अदालत के हुक्म पे, एस्टैब्लिशमेंट के हुक्म पे पीटीआई और नून लीगी हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात भी हुए हैं, और इन मुज़ाकरात की तस्दीक आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नून लीग के उन लीडरों ने की جو ان مذاکرات میں شامل تھے, لیکن یہ دونوں کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے, لیکن ان کو پہنچنا پڑے گا کیونکہ یہ حکم حاکم ہے.
اچھا, مگر آج کی جو صورتحال میری نظر میں آئی ہے کہ اگر عمران خان الیکشن ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ول بی ان ہاٹ واٹر. مگر ایک سوال سروت کہتی ہیں کہ اگر ان کنٹینرز تھے اور کوئی جیسے بھی آپ نے کہا کہ دو دن تک لوگ انٹر نہیں ہو سکے, تو عمران خان صاحب وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور وہ جو
دو دن کے بعد پہنچے, انہیں دو دن پہلے پہنچنا تھا, دو دن کے بعد
عمران خان کی آمد جو ہے وہ 30 گھنٹے لیٹ ہے, 30 گھنٹے لیٹ, اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں.
خبر نہیں, ہاشمی صاحب آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ کا ہمارے ساتھ رہنا احسان مند ہوں, بہت شکریہ. پاکستان میں آپ امیجن کیجئے گا 1:30 بجے کا وقت ہے, اور خبر نہیں ہاشمی کا بہت شکریہ. چند ایک اسپانسر اینڈ آئی ول ٹیک یو ٹو این ادر پرسن, جس میں ہم ذکر کریں گے چند چیزوں کا. اسٹے ٹیونڈ.
Once again, Amir Shamsi of Universal Promotion brings
9th Annual Taza Mississauga Halal Food Festival, June 11th and 12th, Saturday and Sunday. Fun, food and entertainment.
Live performance by Humaira Arshad and Humaira Channa and Qawwali Night by Abu Muhammad and Abu Farid Ayaz of Coke Studio.
Khane peene ki aur kapdon ke beshumar stall, bachchon ke liye beshumar activities, aur haan, Pakistan ka truck art exhibition, Mango Festival.
Free admission, free parking, Celebration Square, Mississauga.
For stall booking and sponsorship, call Adnan Shamsi, Atif Shamsi ya phir Amir Shamsi, 416-662-7861.
ایشین فوڈ سینٹر, انڈین, کینیڈین, صاف ستھری گروسری دے نال
کارکار وچ مشہور ہو چکیا ایشین فوڈ سینٹر ہمیشہ سستے ریٹ تے ودیا سیواواں دین لئی وچن بد ہے.
اپنے ایریے وچ پیندے کسے وی سٹور وچ جاؤ گے تے ضرور بچت پاؤ گے.
ودھیری جانکاری لئی ایشین فوڈ سینٹر دا اکو اک نمبر یاد رکھو, 416-740-3262.
ایشین فوڈ سینٹر, 416-740-3262. ایشین فوڈ سینٹر.
السلام علیکم ایوری ون, مائی نیم از ناصر شاہ. آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں سے ہم مورگیجز کر رہے ہیں, لونز کر رہے ہیں اور کمرشل مورگیجز کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی طرح کی مورگیج چاہیے تو گارنٹی آپ کو بیسٹ ریٹ آفر کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں. اور کمرشل مورگیج کبھی بھی آپ کو چاہیے کسی طرح کی, ہوٹل موٹل, گیس اسٹیشن یا کوئی فرنچائز لینی یا کسی پلازے میں کوئی یونٹ بائی کرنا, تو اس کے لیے بھی ہمیں کال کریں. اور اگر آپ کو بزنس لائن آف کریڈٹ چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں کال کریں. 647-741-9000, 647-741-9000.
مشکل کر دیتا ہے. باقی باتیں ایک طرف, آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق, جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز. لاسٹ منٹ کلوزنگز ہو یا ڈیفیکلٹیز, سبھی کے لیے شیراز شفیق, 416-502-8000, لائسنس نمبر 10845, انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ.
ارے بھائی, ہم جانتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے, جیسے ریڈ لائٹ سگنل, بینک کی لائن, اور ہر روز وہ کافی کی لائن. مگر ہم کرتے ہیں آپ کے اپنوں کے بینک اکاؤنٹس پہ منی ٹرانسفر ان سب سے جلدی, یعنی رسید کٹی نہیں اور منی ٹرانسفر ڈن, صرف اور صرف ایبل ایکسپریس کی ریلائبل سروس کے ساتھ. پاکستان میں ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر سروسز, ہماری پہچان ایبل ایکسپریس. فار فردر انفارمیشن کال ناؤ 416-230-4444. ایبل ایکسپریس.
عائشہ, یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں, ایک ہی جگہ ہے, فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں, فاطمہ گروسرز. مسالے, تازہ سبزیاں, پھل, حلال گوشت, میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر, نیو فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ, ویسٹ آف مسیساگا, 9058487000. فاطمہ گروسرز, سب سے زبردست.
جی اب ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بعض دیر آر فیو پیپل, اٹس آلویز پلیشر میٹنگ دیم. ٹوڈے وی ہیڈ ونڈرفل ٹو گیسٹ, سید حیدر رضا مہدی صاحب یہاں تھے, اقبال ملاڈ والا تھے یہاں پہ, ونڈرفل پیپل. اور کوئی انسان ہمارے سامنے جب آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے بات کرنے سے, آج اس عمر میں بھی ہم اس کے گفتگو کرنے سے, اس کے بات کرنے سے, وی لرن اے لاٹ فرام دیم, لاٹ فرام دیم. So our next guest is Scott Davey. Scott Davey, Davey Real Estate ke saath wabasta hain, been in this field for last 30 years and I was just saying, kehte hain na ke zameen ke niche jab cheeze under temperature and under pressure rehte hain to they change into the gems. Ye jo diamond hai kaise banta hai, وہ جو درخت ایک عرصہ پہلے زمین کے نیچے چلے گئے تھے اور پھر انڈر پریشر اینڈ انڈر ٹیمپریچر اوپر جو تھا وہ ہیرے بن گئے, پھر اس کے ساتھ کول بنا, پھر پٹرول بنا, پھر اور بہت کچھ بن گیا. سو دیٹس واٹ اٹ از. اسکاٹ ڈیوی, بروکر پریزیڈنٹ آف ڈیوی ریئل اسٹیٹ انک. اینڈ میں جب اسکاٹ کا ذکر کرتی ہوں تو آئی ریئلائز اسکاٹ ڈیوی ہیز بین سیلنگ پری کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ فار اوور 30 ایئرس. تین دہائیوں سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہے. اینڈ ہیز ریپرزینٹیڈ جی ٹی ایز بیسٹ ڈیویلپرز. بیکاز ونس, یس آئی ڈیڈ ونس دس مسٹیک, سم ٹائمز وی آر اگنورنٹ ہو دا بلڈر از اینڈ وی اینڈ اپ پیئنگ پرائز. سو ونس یو بائی اینی پری کنسٹرکشن, دا فسٹ تھنگ ٹو نوٹ از ٹو لک ایٹ ہو دا بلڈر از. سو Scott Davey represented many of the GTA's top developers. As a senior real estate industry expert, Scott is an author, regular articles in the real estate. Oh, he writes a lot on the real estate industries. Yes, and wrote a non-profit book, The GTA Affordable Home Ownership Crisis. Mera khayal, I'll definitely talk to him about this, that a GTA Affordable Home Ownership Crisis. Of course, the prices are gone so high, and we will definitely talk. He is the president of Davey Real Estate Inc. and is currently the listing broker of Solmar Developer. Solmar Developer is a great developer. Definitely, we'll talk about this. I wish Scott, you can speak Urdu. Good afternoon, and how are you?
I'm terrific. Thanks for having me today, Rika.
Now, the first thing is that whatever you just said, if you have any questions regarding that,
you can ask. No,
you can ask that question first.
Mm-hmm.
Okay.
Scott Davey, 30 years of experience in the field and worked with the best developers. So, and trustworthy developers, I would say.
Yes.
How do you know that this is a trustworthy developer?
Based on their track record and based on working with them in the past, or consultants I've worked with before can also, you know, recommend or not recommend clients. So
today we will be talking about a special project. It's known as Bristol Place, and this Bristol Place is in the heart of Brampton. When I say heart of Brampton, is right opposite to jo our jo council hai, city center in Brampton. The main intersection is Highway 10 here in Ontario, and Queens is the main intersection. It's a beautiful, tallest building in the Brampton, 199 Main Street. You come down, there is Rose Theater, just a minute, and you will walk into that area almost, or Gage Park. All the events and functions take place there. It's a beautiful place. There is no comparable at the moment with this Bristol Place. You walk 2 minutes, to train station aapko mil jati hai. Scott, first of all, this project we are talking about is a Bristol Place.
Yes.
Developer is Solmar. You have worked with Solmar. What other projects of Solmar where people can identify who this Solmar is?
Sure. So the last three projects they did were Edge Towers, Edge Towers 1, 2, and Oro at Edge Towers. And before that, Park Avenue, Tower 1 and Tower 2 are closed right now. They've just been finished being built. And we're expecting Tower 1 to be ready to occupy in less than a year.
ये तो इट इज राइट देयर इन एट द स्क्वायर वन एंड यू कैन ड्राइव इन दैट एरिया. यू गो आप इंटेरियो लीजिएगा, यू जस्ट क्रॉस बर्नमथोर्प, लुक एट योर राइट साइड, आई मीन टूवर्ड्स द वेस्ट साइड. सो ओरा के नाम से देर इज वर्ड नेम ओरा एंड दैट इज स्कॉट डेवीज ऑफिस आई थिंक. सो दे स्टार्टेड थर्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन.
या दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, सो वी मूव्ड टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस इन वॉन नाउ. बट one thing to mention, the Orowood Edge Towers and the other Edge Towers are going to be the best quality buildings in downtown Mississauga. And really what we're seeing now in Brampton is a similar thing about to happen. Imagine if you were among the first to buy around Square One when there weren't many other buildings there. And also buying in the best quality building in the tallest towers. So this is an amazing opportunity at Bristol Place.
Brampton is progressing by leaps and bounds. Again, somebody told me the other day, because you support Patrick Brown, that is the reason. I said, no, it definitely made a sense. Patrick Brown came in, it made a huge difference. You know, the prices, if you look at the prices, there was a difference of around 200,000 between Brampton and Mississauga. But now, Brampton is an innovation district. Would you mind to explain it? And this 770 itself, we announced those town hall meetings where the Ryerson University was doing town hall meetings in Brampton because they are bringing in a medical university, and I think so out of all the cities in GTA, Brampton is the only place which will have a medical college.
You're looking at me and saying it because I'm from Markham. So
and
no,
you're
no,
jealous. Okay. No. I am healthy and Majid Jamal is very weak because he's
against.
Always wo hote na ek bachcha tha sada aise sukka sada to uski maa ye kehti thi har waqt kudda hi rehnda har waqt kudda hi rehnda khaya kar tenu pani de lagge kudya na kar
but you know nothing against your buildings but Markham is the best.
Let him say. Yesterday there were 4 carjackings in Scarborough area.
Yeah.
Okay, carjackings. 2 were successful.
3 were successful. One was one ran away. Anyway, Scott, yeah. What are the best thing if I want to buy it? Say for instance, I'm thinking of buying because we've been talking about these two buildings, the tallest building in Brampton.
This is one tower. This is one tower, the tallest building.
One of the key factors is what Arifa was talking about. You know, our mayor, Patrick Brown, is doing an amazing thing.
Amazing.
With so much new development coming to Brampton.
Yeah.
We have over 400,000 new Canadians expected to come to Canada, you know, in over the next 12 months.
Mm-hmm.
And 65% of them are going to be coming to the GTA. And we don't have enough houses and condominiums to house the new Canadians.
Yeah.
So really, he's a hero. The fact that he's bringing in so much development into downtown Brampton. So the Innovation District will bring in a lot of new innovation, space for new innovation businesses. It will bring in 4 colleges and universities. It'll bring in new hospital, a hospital zone as well. And so it's going to be part of the hub, the technology hub between the City of Toronto and Kitchener-Waterloo and joined on the GO train. So basically with all this new development coming, it's really going to help, you know, stabilize prices because as we have more and more demand and we have a shortage of land available for zoning, we really need to build more condominiums and more houses. So the mayor is fantastic for what he's doing.
First of all, when I heard about the location of these two tallest buildings, Bristol,
Majid Jamal,
this is amazing. I was surprised that how did he get these to build it right
by
here?
By putting the houses together. There was a bunch of houses there, and he put them together and bought the land and
beautiful. My yeah. God,
amazing.
My God.
But
amazing.
One really important thing I should mention about the Brampton Innovation District, with all these new students coming and all these new jobs coming, including Rogers doing a $100 million new head office just outside where the building's going to be, all these people are going to need a place to live.
Mm-hmm.
And these are going to be the two tallest buildings in Brampton that will be very good luxury buildings. So this is going to be a heightened demand for those two buildings. When you have a heightened demand, it means you can get more rent if you're renting out, or you get more appreciation if you're selling. And really, that's what it's all about.
So the project we are talking about is called as Bristol Place, and I request if you go on my website arifamuzaffar.com. Yes, arifamuzaffar.com. You can look at the whole project. It's right at the top. Just look at it. Bristol Place, if 199 Main Street in Brampton, luxury 1 and 2 bedroom suite designs, arifamuzaffar.com. So you just go there. So this project is given there. If you click this project, this is what Ahmed did. Once you click this project, luxury reaches a new height. Okay, so you go down. It's a connected transit. Abab jaise unne kaha ki char colleges aa rahe hain yahan pe, hospital aa raha hai, university aa rahi hai, medical college aa raha hai. अभी रॉजर्स का भी आपको बताया इन्होंने कि सेंटर आ रहा है. आप सोचिएगा कि अमेजोन के दो सेंटर्स आ गए. देयर इज अ न्यू मॉल कमिंग इन हाईवे 413. डेफिनेटली फोर्ड इज गोइंग टू विन. सो हाईवे 413 ऑफ कोर्स दैट इज ऑन द वे. एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, इफ देयर इज अपकमिंग हॉस्पिटल और अ हाईवे और अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, दैट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस. इज दैट राइट?
यप, एज वेल एज पब्लिक ट्रांजिट एज वेल. द फ्यूचर इज चेंजिंग. You know, it wasn't long ago that downtown Toronto prices were $1,000 a square foot, and
it is
people couldn't afford
$2,000 per square foot.
And people couldn't afford to pay a mortgage or to pay rent and own a car, so they're forced to take public transportation. And so we look at things in Brampton, we think, oh, everyone should have a car because it's Brampton. But the change that's coming with prices, as they get higher and higher, as they're expected to do, people buying smaller units will not need a car because they'll be taking public transit. They just won't simply be able to afford a car, especially with the price of gas nowadays. Mm-hmm. Right? And so it's so important to be next to public transit. You have the GO train, you have the GO bus, you have the other local Zoom.
Zoom,
and,
Zoom is
public
it
transit
connects
as well.
All the way to downtown, like Vaughan ko milata hai. This takes all the way.
So choosing right close to public transit is such a vital, important thing, along with the location and who the builder is, for sure.
So three important things. Number one, location. With location comes the transportation. It's close to GO train. Zoom is there, so you are very well connected. And then, of course, with the... sometimes people talk about, will they have assignment clause on it or not?
We're expecting to have an assignment clause.
Inshallah.
Yeah. You will be able to assign.
Inshallah.
Yep.
You know what inshallah means?
Yes.
God willing.
Mm-hmm. Yep.
So what is your program now? When? Because hundreds and thousands of people are listening to you and watching you right now. When can somebody purchase it?
Soon. I can't give you a specific date at this time, but it will be soon.
So you know, in our business, we say a scoop.
Mm-hmm.
Okay, so is there a scoop for us?
Sure. We're not announcing prices yet, but I'll tell you, they're going to be in the low 500s. So there's a scoop for you.
Thank you very kindly. Low 500. But let me tell you one thing. The comparable, when we talk about the comparable, this comparable is the main thing what you look is, who is the builder? What is the location? What are the amenities? So, even if I come down, I'm right there in the Gage Park. If I walk towards right or left, there is a skating park as well. And there is a train section as well. So, what else would you say? Can
yeah.
you talk?
Yeah,
I'll just mention one other thing to you. It's so important to have a good suite size mix, because today it's all about affordability. That's everyone's concern, is can I afford to buy? So half the building will be suites 500 square feet or smaller. So with a suite size mix like this, it's really going to help affordability. And so that's so important today.
So, but you do have 2 bedrooms and 3 bedrooms.
Yes.
So if somebody wants 2 to 3 bedrooms, of course
yeah.
they can...
So the sizes of the suites in the tower mm-hmm. will be 432 square feet up to 650 square feet. And there's no studios there. The smaller ones are proper 1 bedrooms, you know, with a proper bedroom, not a studio. And then we'll have larger suites and regular size suites in the podium and we'll have some large suites in the penthouse as well. So we will have something for everyone.
What about swimming pool and gyms and
amenities,
all kind
other
of
amenities?
We have the full range of amenities, but I'll be announcing that next time or the time after.
No, he has to keep the... So not everything comes in the scoop.
Of course.
Not everything comes in the scoop.
If he tells us everything now, so we won't invite him again, right?
That's right.
Scott Davies, thank you very kindly.